नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 4 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ऑकलैंड में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। लाल रेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने टूर्नामेंट में टीम के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।